اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، وصلى الله على أهل بيت رسول الله، وصلى الله على شهداء كربلاء، وصلى الله على سبايا آل محمد، من علي بن الحسين زينا للعابدين وسيدا للساجدين، وإلى زينب الكبرى أقيلة بني هاشم، وإلى بقية السبايا الكربلاء وآل محمد. قال مولانا ومقتدانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: علامات المؤمنين خمسة، الصلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتخطين في اليمين، والتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أجل محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت سی احادیث کی کتابیں ہیں امت مسلمہ کے درمیان، اسی طرح ان احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط موجود ہیں، جس میں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں فرق کیا جاتا ہے اور صحیح احادیث کو اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. بہت ساری ہماری امپورٹنٹ کتابیں ہیں جو احادیث کے اندر جو ہماری دین کو ہمیں بتاتی ہیں، ان میں ایک کتاب جو بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ وسائل الشیعہ ہے. زیادہ تر امکان ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو وسائل الشیعہ اور کافی جیسی کتابوں میں احادیث ہیں وہ زیادہ تر صحیح احادیث ہیں. نہیں کہیں گے ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں، لیکن زیادہ تر احادیث صحیح ہیں. لہذا اس حدیث میں جو کہ پرکھنے کے بعد، جس کی سند کو غور سے دیکھنے کے بعد کہ گیارہویں امام سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور گیارہویں امام نے مومن کی پانچ علامتیں بیان کی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پانچ علامتوں میں ایک اہم ترین علامت چہلم کے دن زیارت کرنا یا زیارت پڑھنا ہے، شہدائے کربلا کے. اچھا، اس حدیث کو ہم انشاءاللہ آج بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے اور آنے والی دو مجالس میں بھی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ سوالات آج کے دور میں جو کھڑے ہو سکتے ہیں، ذہن میں آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا کے اندر بھی کیے جاتے ہیں. ہم جو امت اسلامیہ ہے ان کے درمیان موجود مختلف مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں، کبھی اعتراض کی شکل میں سوال کرتے ہیں، کبھی خود سوال ہوتا ہے، اور ہم جو ہے ان تمام افراد کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے حال احوال کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں. ان میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم اربعین کیوں مناتے ہیں؟ یعنی اربعین یعنی چہلم، چہلم یعنی مطلب چالیسواں، چالیس دن، یعنی امام علی مقام کی شہادت کے بعد چالیس دن کے بعد جو دن ہے اسے ہم اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اتنے غم و اندوہ کے ساتھ، اتنے اہمیت کے ساتھ اور فضیلت کے ساتھ ہم مناتے کیوں ہیں؟ کیا اس کی کوئی شرعی دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی کچھ اس میں ارشاد فرمایا ہے؟ کوئی قرآنی دلیل ہے ہمارے پاس، یا صرف یہ ایک تاریخی واقعے کی وجہ سے ہم اس واقعے کو صرف دہراتے ہیں اور بیان؟ کیونکہ تاریخ میں یہ ایک تلخ واقعہ تھا، اور اتفاقاً چالیس کے دن جو ہے اہل بیت رسول کو قید سے رہائی ملی، اور جیسے ہمارے برادر ابھی مرثیہ میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹے. پاس جو بعد میں کچھ روایات یہ بھی سامنے آئیں کہ وہ کربلا تشریف لے گئے، اس کے بعد واپس مدینہ آئے. بہرحال اس بحث کو ہم بعد کے لیے ٹال دیتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے علماء کرام جو اس موضوع کے اوپر تحقیق کرتے ہیں उनका कहना यह है, और तारीखी किताबों में भी ये मिलता है कि शाम से रहाई के बाद अहले बैत अलैहिम सलाम डायरेक्ट मदीना तशरीफ लाए हैं, करबला नहीं गए। हो सकता है कि अगले साल करबला तशरीफ ले गए हों, क्योंकि हमारे पास मदीना तशरीफ लाने के बारे में मौसख तरीन वाकयात भी नकल हुए हैं, मरसिये भी नकल हुए हैं। जैसे कि अभी बरादर उन मरसियों में से एक मरसिये को और उस पूरे मंजर को शेर की जबान में अभी थोड़ी देर पहले मरसिये की शक्ल में, सलाम की शक्ल में पेश कर रहा है। मुकाबले में हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस और मजबूत दलील नहीं है। हमारा मजहब दलाइल के ऊपर बेस करता है, ना जज्बात और एहसासात के ऊपर। जज्बात और एहसासात दलीलों और अक्ल की रहनुमाई में हुआ करते हैं, ना कि अलग से कोई अपनी रास्ता नहीं बनाते। तो हम जज्बाती तरीके से मजहब को कभी भी बुनियाद नहीं बनाते हैं, चाहे वो तारीखी हवाले से। अब आते हैं सवाल जो था, वो अहम तरीन ये है कि ये क्या सिर्फ एक तारीखी वाकया है इसके हम बना रहे हैं, या इसके पीछे इसकी कोई फजीलत अहमियत कोई मकाम व मंजिलत भी बयान हुई है? क्योंकि आशुरा के बारे में यह सवाल नहीं उठता, तासुआ के बारे में नहीं उठेगा, अशरे मुहर्रम के बारे में नहीं उठेगा, विलादत शहादत के बारे में नहीं उठेगा, हुजूर पाक की विलादत के बारे में नहीं उठेगा, हुजूर पाक की रहलत के बारे में नहीं उठेगा, दीगर किसी इमाम मासूम के हवाले से ये सवालात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तारीखी वाकयात नहीं है बल्कि उसके पीछे उन दिनों की भी अहमियत है। एक इवेंट नहीं है, हिस्ट्री में एक ऐसा हुआ था, लिहाजा हम उसको अपनी याद के तौर पे मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या सेम सिचुएशन यहाँ पर है अरबईन के अंदर, या सिर्फ एक हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट था जो हुआ तो हम उसकी याद मना रहे हैं? याद मनाना हक है, हर कौमें मनाती हैं, अपने अच्छे और यादगार दिनों को मनाती हैं, इस इनवान से भी ठीक है। क्या बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है? ये वो सवाल है जिसके हम जवाब की तलाश कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ शक्ल व सूरतों में इवेंट्स और उसमें होने वाले हादिसात व वाकयात के साथ साथ हम इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे। तो बुनियादी तौर पर आपके जहन में चीजें आ गई। हमारे पास देखें बहुत से वाकयात ऐसे हैं तारीख इस्लाम में जिनकी डिटेल में बारीकी के साथ तफसीलात हमारे पास नहीं है। मोटी मोटी बातें हैं लेकिन बहुत बारीकियों के साथ तफसीलात नहीं है। बाज वाकयात ऐसे हैं जिसकी बहुत बारीकी के साथ डिटेल में तफसीलात मौजूद है। जैसे मसलन इमाम आली मकाम सैयद शोहदा अलैहि सलाम जब मदीने से आप खुरूज कर रहे थे, निकल रहे थे, तो उस वक्त मदीने में क्या कुछ होता रहा उसके बारे में बड़ी डिटेल है हमारे पास। हत्ता वो जुमले नकल हुए हैं, दरबार के अंदर गए तो वहां पर क्या जुमले इरशाद फरमाए, वहां से निकले तो आप कहाँ तशरीफ ले गए, रोजे रसूल पर गए तो क्या फरमाया, अपनी वालिदा के रोजे पर तशरीफ ले गए तो क्या फरमाया, किस शख्स से गुफ्तगू हुई तो इमाम ने क्या इरशाद फरमाया, आपने खुतबा क्या दिया, खुतबे के अंदर क्या इरशाद फरमाया, ये सारी तफसीलात हमारे पास मौजूद है। इमाम आले मकाम उसके बाद मक्का तशरीफ ले गए जहां 4.5 महीने से 5 महीने आपने क़याम किया है। ये 4.5 से 5 महीने की सारी तफसीलात हमारे पास नहीं है। मोटी मोटी चीजें हमारे पास हैं, इमाम ने वहां जो दुआएं पढ़ी, इमाम ने एक आध वहां जो खुतबे इरशाद फरमाया, किसी वफद के साथ मुलाकात हुई, हाजियों के साथ बातचीत हुई, एक हद तक चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी मुद्दत है, छोटी ड्यूरेशन तो नहीं है। इसमें बहुत सारे वाकयात हुए हैं, वो सारी तफसीलात हमारे पास नहीं है, तारीखी एतबार से किताबों में सब्त नहीं हो सका है। अच्छा, अब सवाल ये आएगा, क्या इसके तारीख में सब्त न होने की वजह से बारीकियां और जुजियात, क्या इस पूरे करबला के वाकये के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है कि हम कहें हम क्लियर नहीं हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं, क्योंकि अगर वो तफसीलात होती तो और अच्छा होता। वो तफसीलात न होने से वाकई करबला के ऊपर कोई नेगेटिव असरात नहीं पड़ते। एक बात, अब आपने सफर जब शुरू किया है मक्के से कूफे की तरफ, आप कूफा तशरीफ ले जाना चाह रहे थे, रास्ते में करबला में पड़ा हुआ। अब ये जो सफर है इसके बारे में हमारे पास बहुत सी तफसीलात हैं कंपेयर टू मक्का, लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि हर बारीकी उसके अंदर आई है। दो बात हो गई, वाकई करबला द डे वन से लेकर 12 मुहर्रम या 11 मुहर्रम तक एक एक डिटेल बारीकी के साथ मौजूद है हमारे पास। छोटा सा छोटा भी कोई वहां पर बातचीत हुई है, इमाम ने कुछ इरशाद फरमाया, इमाम के असहाब ने कोई चीज इरशाद फरमाई है, दुश्मन ने कोई बात कही, दुश्मन को जवाब दिया, इसकी एक एक तफसील हमारे पास क्या है, मौजूद है। असीरों को असीर करके कूफे की तरफ लाया गया, कूफे में क्या हुआ इसके बारे में भी हमारे पास बहुत डिटेल के साथ तफसीलात मौजूद हैं, खुतबे मौजूद हैं, अहम तरीन मुकालिमे जो हुए हमने गुज़श्ता मजालिस में उसके ऊपर डिस्कस किया। सानिया जहरा जैन कुर्रा सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, जवाब में कैसे जवाब दिया गया, माहौल कैसा था, सूरत हाल किस किस्म की थी, लोगों के रवैये कैसे थे, लोग किस तरह पेश आए, अइमा ने किस तरह उनको जवाब दिया, वगैरह वगैरह, ये सारी तफसील। अहम तरीन जो हिस्सा है वो है, जो कि कद्र तूलानी भी है, वो है कूफा से शाम का सफर। हम कूफा हमारे पास कूफा से शाम के सफर की बारीकियां नहीं है, तफसीलात और डिटेल उस तरह नहीं है जिस तरह कूफे के बारे में, जैसे कर्बला। इसकी वजह क्या है, क्योंकि असीर असीरा ने करबला दुश्मन के नरगे में थे और कोई सोर्स ऑफ वो नहीं था कि जिसके जरिए से ये वाकयात हम तक बारीकी के साथ लम्हा बा लम्हा आते। पहला दिन यहां पर पड़ाव किया, यहां पर कयाम किया, यहां पर ऐसा हुआ, ये वाकया हुआ, सुबह ये हुआ, शाम को ये हुआ, ये तफसीलात हमारे पास नहीं है। हत्ता रास्ते के बारे में कि किस रास्ते से शाम असीरों को लाया गया, इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन ये इख्तलाफ राय खत्म हो जाती है कुछ निशानियों की वजह से। वो निशानियां जो कि इस पूरे सफर के दौरान, कहें पर कोई बच्चा शहीद हुआ है उसका मजार है, कहें कोई हामिला बीबी थी जिनका बच्चा सिक्त हो गया, इस सबर की मुश्किलात और यजीदी फौज के तशद्दुद और उनकी तरफ से जो मुसीबतें डाली गई उसकी वजह से तो वो बच्चा वहां पर दफन हुआ और तारीख में सब्त हो गया, कहें पर कोई ऐसा अनहोना वाकया हुआ है मौजजाती किस्म का, या कहें पर जो है वहां की अवाम की तरफ से कोई ऐसा रिएक्ट आया है उसकी वजह से वो हमें पता चला कि अच्छा काफिला यहां से गुजरा। अगर थी तारीख में मौजूद है कि किस रास्ते से गुजारा गया, बादिया का रास्ता था, ये रास्ता था, वर्षों। इसी तरह अब आते हैं कैद से रहाई के बाद के वाकयात के ऊपर। अगरची हमारे पास मोस्टली जो चीजें हैं वो ये है कि ये कारवान मदीने वापस लौट के आया, ना कि करबला तशरीफ ले गया। एक अगले सवाल आते हैं, वो है सर मुकद्दस सैयद शोदा अलैहिस्सलाम और दीगर शहीदों के सरहाए मुबारक व ताहिर व अतहर व मुतहर को कहाँ ले जाया। ये बात तमाम हमारे उलमा इतफाक करते हैं इस बात पर कि सैयद शोहदा अलैहिस्सलाम के सरे ताहिर अतहर व मुतहर को वापस करबला ले जाया गया। हाँ, कुछ उलमाए कराम कहते हैं सर मुकद्दस को नजफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजे के पास दफन किया गया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ उलमा की राय यह है तारीखी तहकीक के बाद कि नहीं, करबला में इमाम आली मकाम के उसी रोजे में ही दफन किया गया। ये आ गई दो बातें। हाँ, इसके बीच में तारीखी बातें हैं तो तारीख मौरखीन लिखते हैं, किसी मौरख ने लिखा मिस्र में दफन किया गया, बाज मौरखीन लिखा नहीं, वहीं पर जो कब्रिस्तान है शाम में जहां दीगर शोहदा के कब्रों के मजार बने हुए हैं, आपने देखा होगा वहां पर वगैरह। और ये राय भी है कि असीरा ने करबला के सराय मुकदस को सबको करबला लाया गया। बहरहाल कैसे ये तफसीलात नहीं है, लिहाजा लिहाजा जो एतराज करते हैं या जो सवाल उठता है उठाते हैं, इसलिए इन चीजों को पेश नजर रखते हुए वो आप जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं किनको, साहेबान ईमान। इसलिए कहते हैं ये अरबईन कहाँ से आ गया, आज से आप लोग जो है ना सद्दाम के गिरने हुकूमत गिरने तक तो कोई वहां अरबईन की मशी वशी होती नहीं थी, कुछ भी नहीं होता था, ये अचानक एक नई चीज आप लोगों ने शुरू कर दी। हमारे मुल्क में अरबईन की मशी जब लोकली होती है तो FIRें कटती हैं, उनको मुश्किलात में डाला जाता है। खुद बाज मोमिनीन ने भी एक टाइम में ऐसा रद्द अमल दिखाया है कि अरबईन की मशी करने वालों के ऊपर, खासकर कोरोना की वजह से जब रास्ते बंद थे अराक के, या हालिया गुज़श्ता चंद सालों में, तो मोमिनीन ने ही उसकी मुखालिफत भी की है, जो नहीं जानते हैं चीजों को, डीपली समझते नहीं है, एक नई चीज है, हमारे पास तो ऐसा होता नहीं था, ये हो क्योंकि मोमिनीन को अपने दीन के को लेकर इतनी ज्यादा मारिफत और गहराई नहीं रखते। लिहाजा इन तमाम पस मंजर को सामने रखते हुए, क्योंकि आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं और आज दीन को सीखने का दौर है, आज ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बस ऐसा हुआ था और छुप जाएगा, नहीं, ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, जो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्त कहते हैं ना, दुनिया इज ए काइंड ऑफ ग्लोबल विलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंडों से भी कम टाइम में एक से जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, कोई चीज छुपने का दौर नहीं है। अब आगे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आ रही है, जो तेजी के साथ अपग्रेड हो रही है, और ये टेक्नोलॉजी मजीद उन चीजों को बरवला करेगी जो सच्चाई नहीं होगी। और क्योंकि मजहब हक का सच और हकीकत पर बुनियाद रखता है, लिहाजा उन सच्चाइयों को उस मजहब के मानने वालों को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। लिहाजा एज ए हम दीनी तालिबे इल्म के, जितना हम समझते हैं हमारा फरीजा बनता है कि हर महफिल में उन हकाइक को सामने रखा जाए जिसकी बुनियाद पर यह मजहब कायम कायम। अब ये बैकग्राउंड आपने ले लिया, आप समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जरा इस हदीस की तरफ। 11वें इमाम किताब वसाइल शिया में फरमाते हैं कि देखें मोमिन की जो अलामात है ना वो पांच। अच्छा, ये जो अलामात इमाम ने फरमाया है ये सारी अलामात जाहिरी है। कुछ अलामात फरमाते हैं ना, बाज़ औक़ात हुजूर पाक ने फरमाया मोमिन की अलामात मसलन 10 हैं, किसी और इमाम ने फरमाया मोमिन की अलामात 3 है, कहें फरमाया 15 है, कहें 10 है, कहें कुछ फरमाया, फरमाया वा मिन अलामातिल मोमिनी फलान फलान फलान। उनको आप देखते हैं वो डायरेक्ट मोमिन के अफकार और किरदार और मानवियात और रूहानियात से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये जो अलामात यहां पर आई हैं इनमें आप देखते हैं ये सारी अलामात जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं वो ऐसी अलामात हैं जिसको यानी कुव्वते बसारत से अपनी आंखों से देखा जा सकता है। मसलन फरमाया कि देखें मोमिन की अलामात पांच है, सलातुल खमसीन व जियारतुल अरबईन। फरमाया सलातुल अहद व खमसीन, मोमिन जो है ना जो मुस्तहब नमाजें होती हैं उन मुस्तहब नमाजों को भी आम हालात में पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे सुबह की 2 रकात है, जोहर असर की 8 रकात है, मगरिब व इशाक वगैरह है, नमाज कुफीला है वगैरह वगैरह, ये टोटली इनको और फर्ज नमाजों को कठे कर दो तो ये तकरीबन 51 बन जाता है। अच्छा, ये अलामत क्या है, जाहिर है ना, आप मुस्तहबात कोई पढ़ रहा है तो दूसरे को पता चलता है ये बंदा अब मुस्तहब पढ़ने लग गया है, मगरिब व इशा के दरमियान इसने डिस्टेंस दिया है आम हालात में तो मुस्तहब पढ़ रहा है, मसाजिद में भी आमतौर पर होता है, खैर यूरोप में हालात जरा मुख्तलिफ हैं, तो हम अपने फर्ज को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं, इसलिए कि इमाम ने फरमाया है पहले फर्ज है बाद में सुन्नतें और मुस्तहब है। फरमाया अगर आपकी मुस्तहब और सुन्नतें फर्ज से टकराएं तो आप फर्ज को उठा लें, ऐसे हालात में हैं आप सफर पे हैं, आप जल्दी में हैं, आपकी जॉब है, यहाँ यूरोप की एक खास स्पीडी लाइफ है, मुमकिन है अपने मुल्क में ये सूरत हाल ना हो, मुमकिन है और जगह पे ना हो, लेकिन यूरोप के अंदर रहने वालों के लिए काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो उसे छोड़ना भी क्या चाहिए, नहीं चाहिए। एक तो अलामत ये बताई इमाम ने, दूसरा फरमाया तख्तीम फिल यमीन, नॉर्मल हालात में क्या करता है मोमिन की एक अलामत ये है कि उसके हाथ में अंगूठी होती है, मेरे हाथ में अंगूठी हुआ करती थी लेकिन आप जैसे प्यारे मोमिनी ने कराम हदीयतन वो हर वक्त उठा लेते हैं, 6-7 दफा ये वाकया रिपीट हुआ, अब मेरे पास अंगूठी बची ही नहीं है, आप दुआ करें मैं ज़ियारत के लिए जाऊंगा तो आपके बाद फिर एक अंगूठी, बल्कि नहीं बहुत सारी अंगूठियां लेके आऊंगा ताकि अगर मोमिनीन ले भी लें तो एक आध मेरे पास भी बचे, सलवात भर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले आला। फिर फरमाया ताफीरुल जबीन, मोमिन की एक अलामत यह है कि वो खाक पर सजदा करता है या जमीन से उगने वाली चीजों पर सजदा करता है और उसकी पेशानी अगर वो मुस्तहबात को भी अमल करे तो ज्यादा इम्कान ऐसा होता है कि बिलाकर पेशानी पर निशान बन पड़ता है, अगर ये जबरदस्ती निशान बनाने की बात भी खुद ब खुद से हो जाता है बना, हो सकता है ना भी हो जाए, जरूरी तो नहीं है, एक जनरल बात बताए। अब ये चीज भी ऐसी है कि आंखों से देखी जा सकती है, अंगूठी पहनूंगा तो नजर आएगा ना, पेशानी पे निशान होगा तो नजर आएगा, है या नहीं है। अब आते अल जहरु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नमाज में हत्ता जोहर और असर की नमाज हो तो भी, जो कि हम दिल में पढ़ते हैं, आस्था पढ़ते हैं, वहां पर भी बिस्मिल्लाह को जहरा थोड़ी सी ऊंची आवाज में पढ़ता है। जैसे आज दोपहर को हमने जोहर असर पढ़ी, आपने महसूस किया होगा, जमात पढ़ रहे थे भाई के घर में, तो वहां पर बिस्मिल्लाह थोड़े से ऊंची आवाज में पढ़ी जा रही थी। और फरमाया वज़ियारतुल अरबईन, मोमिन की अलामात में से एक अलामत यह है कि अरबईन के दिन वो जियारत पढ़ता है या जियारत को जाता है। अब पता चला अरबईन इसे हिस्टोरिकल एक वाकये का नाम नहीं है जिना, ये अब हमारी जो है इबादत के अंदर बराह रास मासूम की तरफ से इंटर किया गया। कोई नहीं कह सकता है अरबईन का जो वॉक कहते हैं जिसको इंग्लिश में, या मशी, या अरबईन के जो जुलूस वहां पर निकलते हैं, या नजफ से करबला की तरफ 80 किलोमीटर की मशी होती है, या हिस्टोरिकली उस वक्त से इराक के अंदर पूरे इराक से लोग अरबईन के दिन करबला की तरफ आते थे कि बीच में कभी सद्दाम ने रोका, कभी उससे पहले हसन बकर ने रोका, कभी किसी और ने रोका, जालिमों ने उससे पहले मुतवक्किल ने रोका, पांव काटे, हाथ काटे, आग की भट्टियों में डाला, तेल की कड़ाइयों में फेंका, लोगों को सलाखें डाली आंखों में। ये हकीकतें ड्रामाटाइज नहीं हो रही है, रियलिटी ऑफ हिस्ट्री है। आप उठा के देख लें किताबों को, तारीख इब्न आसम कूफी को उठा के देख लें, आप दीगर किताबों को उठा के देख लें, उसके अंदर है। इजाजत नहीं, इमाम आली मकाम की रोजे, रोजा तो नहीं था, कब्र ताहिरो अतारो मुताहर को क्या करते थे, मिटाते थे, और सुबह ये मिटाते थे इनके कारंदे हुक्काम के बनी अब्बास के, रात को आशिकान इमाम हुसैन अलैहि सलाम आते थे, वहां पर पत्थर वत्थर इकट्ठी करके, मिट्टी इकट्ठी करके निशानी कब्र की बना के चले जाते थे। फिर उन्होंने वहां पर जासूसी शुरू कर दी, जो भी जियारत के लिए आता था उसको पकड़ते थे, उसके पांव काटते थे, उनके घर वालों पे जाकर तशद्दुद करते थे, टॉर्चर करते थे, जेल में डालते थे। यहां तक कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि उस कब्र मुतहर के नजदीक बेरी का एक दरख्त था, सिदर जिसको कहते हैं, हमारे पास रिवायात है कि बेरी का दरख्त काटना हराम है। क्या आज बेरी का दरख्त काटना हराम है? नहीं है बाबा, आपके घर में बेरी का दरख्त काट दो। तो लेकिन इमाम ने तो फरमाया था बेरी का दरख्त काटना, इमाम ने फरमाया था उस दौर के लिए जिस दौर में बेरी का दरख्त नवासे रसूल के रोजे की निशानी थी, अगर उसे काट दिया जाता तो निशानी खत्म होती, क्योंकि खेत बना रहा था, उन्होंने हल चलवाया वहां पर, काश्तकारी करवा दी कि रोजे नवासे रसूल मिट जाए, खत्म हो जाए, किसी की याद में न रहे, भूल जाए लोग। जैसे कि कई 100 साल तक, 200-250 साल, या पता नहीं 100 साल तक या 80 साल तक, हसबुल इख्तलाफ तारीख, मौला अली के रोजे का पता नहीं था लोगों को। आप मसाइब में सुनते हैं ना, तवज्जो फरमा लीजिएगा, मसाइब का एक जुमला पढ़ रहा हूं जो मसाइब में आप सुनते रहते हैं। मसाइब में सुनते हैं, शाम गरीबां के वक्त एक यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है, मैंने एक बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी हुई थी, मैं करीब गया कि उस आग को बुझाऊं, तो बच्ची ने कहा शेख मेरे नजदीक ना हो, नहीं आओ, तुम नामहरम हो और मैं नामहरमों को जो है करीब आने नहीं दूंगी, छूने नहीं दूंगी। खैर मैंने कहा मैं आग बुझाना चाहता हूं, खैर किसी तरह मट्टी फेंक के या कुछ करके आग बुझा दी। तो उस बच्ची ने रोते हुए पूछा, शेख जरा ये बता सकते, शेख यानी बुजुर्ग मोहतरम, कहा शेख जरा ये बता सकते हो कि नजफ का रास्ता कहाँ है? कह रहे मैं ताजुब करने लगा, ये बेटी, ये बच्ची नजफ क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था नजफ में मौला अली का रोजा है। बच्ची जानती थी क्योंकि घराना ये आले रसूल से ताल्लुक रखती थी, बच्ची को पता था कि हमारे जो दादा हैं वो नजफ में दफन है, क्यों, दुश्मन के खतरे की वजह से, ये सच्चाई छुपी हुई थी। आज तक सैयदे कायनात रसूल की इकलौती बेटी का मजार मालूम है किसी को? ऑथेंटिकली कोई कह सकता है ये मजार है? बोलो टूटा फूटा कोई पत्थर ही हो वहां पर, कोई अलामत हो, है मालूम है, पता नहीं जन्नतुल बकी में है, रोजे रसूल के अंदर है, किनारे में है, बकी के उस हिस्से में, इस हिस्से में है, नहीं पता हमें। अब ये बात आई है तो मैं एक बहुत बड़े अल्लाह के वली मुश्तहिद और हमारे तकरीबन हमारी करीब तरीन की तारीख में गुजरे हैं और कुम जले जाएं तो हरम बीबी के हरम के साथ ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ये आलम तशय्यो बल्कि आलम इस्लाम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ये आयतुल्ला मराशी नजफी की लाइब्रेरी। या वलीउल्लाह शख्स थे, सारी जिंदगी इन्होंने अहम तरीन किताबों को इकट्ठा करना और उस पर रिसर्च करना वो किया। ये हत्ता कि पैसे कम पड़ते थे शाह के दौर में तो ये क्या करते थे, इजारा नमाज पढ़ते थे, इजारा रोजे रखते थे दूसरों के मैयतों के, रख के उन पैसों से वो हदिया लेते थे और उस हदिये से किताबें खरीदते थे। इतनी अजीम लाइब्रेरी बनाई, ये वलीउल्लाह शख्स थे, ये उन्होंने ही ये तारीख लिखी। तमाम जो इमामजादों के रोजे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ईरान में, इराक में, हमारी तरफ हैं, दीगर जगहों पर हैं, उनकी अजरबैजान की साइड पर है, उनकी जो तहकीक की है कि अथेंटिसिटी क्या है इन रोजों की, वाकई किसका बेटा था, किसका बच्चा था, कहाँ से आया था, इस आयतुल्ला मराशी नजफी ने की बताया है कि अथेंटिक है, ये सही है, ये कौन है, कहा कब कैसे किस तरह का। यह आयतुल्ला मराशी नजफी कहते हैं कि मैंने एक खास किस्म का, जिसको हम कहते हैं ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चिल्लाकशी किया, या एक खास किस्म की इबादत शुरू कर कि ये मालूम करूं कि रोजा ये सैयदा ये कायनात फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा कहाँ। कह रहे कि मैंने आलम ख्वाब में मुझे पैगाम मिला आयतुल्ला मराशी ने चुकी, ये राज है, ये सिर्रुल्लाह है, अल्लाह का राज है, इसके पीछे तहकीक करना छोड़ दो। हाँ तुम्हें फातिमा जहरा सलामुल्लाह की जियारत करनी है ना, तो कुम में हजरत मासूमा की जियारत करो, वही जियारत है, वहां सलाम पहुंच जाएगा, उस हरम में जाओ वहां जाकर सलाम करो बीबी के, क्योंकि ये अल्लाह का राज है, इमाम के जहूर तक ये राज उसी तरह रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। भाई क्यों हजरत फातिमा जहरा सलमा की कब्र पोशीदा रही, खुफिया रही, सिर्रुल्लाह बन गई, यहां तक कि मौला अली की कब्र भी खुफिया रही, सईदुल शोहदा अलैहि सलाम की, क्योंकि कब्र का पता चलता था तो उसे तबाह करने की कोशिश की गई, मगर इमाम हुसैन अलैहि सलाम सईद शबाब अहले जन्ना सईदुल शोहदा अलैहि सलाम है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन नवासे रसूल की कब्र के साथ मगर नहीं किया गया ये सारी चीजें। तो अजीजो इसलिए जहन में रखें, अरबईन उसी वक्त से सन 61 हिजरी से, जब अरबईन के दिन खानदान इस्मत व तहारत को रहाई मिली जेल से और वो मदीने तशरीफ लाए और जिनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हुजूर पाक के वो अजीज सहाबी जो नाबीना हो चुके थे, अपने गुलाम उत्फिया या अत्फिया के साथ क्या है करबला पहुंचे ठीक अरबईन के दिन। उस वक्त से यह रस्म थी कि लोग अतराफ के लोग क्या करते थे, अरबईन के दिन पैदल जो है मशी करते थे, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं अरबईन वॉक करते थे, जुलूस निकालते थे हमारी उर्दू जबान में, जुलूस लेकर क्या करते थे इमाम के रोजे में। ये उसी वक्त से शुरू है, उसी वक्त से जारी है। हाँ बीच में कभी हुक्काम ने हुक्मरानों ने पाबंदियां लगाई, पांव काटे, हाथ काटे, आंखों में सलाखें डाली, तेल की कड़ाइयों में फेंका, ये सब कुछ तशद्दुद किया, थोड़ी देर के लिए मामलात रुक गए, जो ही वहां से जुल्म से आजादी मिली फिर वही शुरू हो गया। सेम सद्दाम, क्योंकि सद्दाम इजाजत नहीं देता था, सद्दाम के दौर में बहुत महदूद पैमाने पर लोग आते थे अरबईन के लिए, अराकी होते थे, कुछ खास कबीले आ सकते थे, ज्यादा शोर भी नहीं करना, ज्यादा बड़ा रश नहीं करना, डरता था सद्दाम कि कहें अरबईन के जुलूस के लिए आए हुसैनी जज्बे के साथ ये मेरी मेरा तख्ता ना उलट दें, क्योंकि एक दो दफा ये हुआ भी था, कोशिश भी की गई थी, लिहाजा पाबंदी लगी। जूं ही ये पाबंदी हटी, आज आप देखते हैं अभी एक दिन पहले जो लास्ट मैंने जो है न्यूज पढ़ी है इराकी चैनल्स के ऊपर, वो 1 करोड़ से ज्यादा जायरीन अभी वहां पहुंचे हैं, जिसमें कम से कम 14 लाख ईरानी जायरीन पहुंचे हैं, सेकंड नंबर पे पाकिस्तानी और अफगानी जायरीन वहां पहुंचे,
दुनिया के मोर देन 85 कंट्री के जायरीन इस वक्त अराक कल तक पहुंचे हुए थे। आज के मुझे ताजा डेटा नहीं देखा, कल तक का डेटा बता रहा हूं आपको, मैंने अपने ट्विटर पे भी डाल दिया था, पहुंचे हैं वहां पर। ईरान अपने डेटा में बयान करता है अरबईन के इन्हीं जो है एक वीक के अंदर हमारे जो जायरीन वहां गए हैं 8 लाख ज्यारत करके वापस आए हैं, और पीछे हमें ख्याल है कि कम से कम जो है मजीद 10 से 15 लाख लोग जाने वाले हैं। ला हौल ला कुव्वता
लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद।
11वें इमाम ने जो अरबईन को जिस अंदाज से पेश किया है उसके बारे में हमारी सदी के मौजूदा इस वक्त खुदा उनको मजीद तूल उम्र इनायत करे, हजरत आयतुल्ला जवादी आमली या आरिफ बिल्ला वलीउल्ला मुफसिर कुरान शख्सियत इसकी शरह करते हैं और एक जुमला कहते हैं, मैं वो जुमला आपको हदिया करना चाहता हूँ। फरमाते हैं जिस तरह नमाज दीन का सुतून है, इसी तरह आशुरा वो करबला वो ये अरबईन व ज़ियारत अरबईन निज़ाम इमामत व विलायत का सुतून है। मारिफत व इश्क व इश्क कुरान व इतरत का सुतून है। बहुत बड़ा जुमला है और ये मुझे सा कोई खतीब व जाकिर नहीं है कि ऐसे जोमों में आए उठा के बोल दिया उसके पीछे जो है कोई प्रूफ और एविडेंस मौजूद ना हो। फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम कोह तूर में गए, कौम को कहा जनाब हारून को छोड़कर मैं अल्लाह के हुजूर मुनाजात और इबादत और बंदगी करने जा रहा हूं ताकि अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आ जाए हमें कि हमने करना क्या है आगे क्या क्या। कौम ने भी बहुत सारे सवाल किए हैं। वाइज वादना मूसा अरबईन 40 दिन बगैर कुछ खाए पिए जनाब मूसा को है तूर में रहे। नतीजा क्या निकला जनाब मूसा अलैहि सलाम तौरात किताबुल्लाह अता कर दी 40 दिन की इबादत के। लिहाजा हम भी अव्वल मुहर्रम से 20 सफर तक कुरान और इतरत के साथ तवस्सुल व तमस्सुक व मारिफत व अज़ाब व मुसीबत व मरसिया व नौहा व खताबत व इल्म व हिकमत व दानाई इश्क व विला है ये सब तमस्सुक कुरान और इतरत करते हैं। और अरबईन के दिन क्या है वाइज़ वअदना मूसा अरबईन लैला, ये बिल्कुल उसी तरह ही है 40 दिन की आजादारी मातमदारी तवसुल तमस्सुक गिरिया वजारी इल्म दानाई मारिफत दीन इखलाकियात हैं कुरान की मारिफत इतरत की मारिफत हम हासिल करते हैं और आखिर में अरबईन के दिन वो नतीजा लेते हैं। इसलिए 11वें इमाम ने फरमाया मोमिन की पहचान ये है कि वो अरबईन के दिन क्या करता है ज़ियारत अरबईन पढ़ता है या ज़ियारत अरबईन को जाता है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब गौर कीजिएगा। आपको याद है आपने मफातिहुल जिन्ना तो आप लोगों के पास मोबाइल में एप्लीकेशन तो होती है ना कम से कम, जो हमारी दुआओं की एक किताब है, मरहूम शेख अब्बास कुम्मी अलैहि रहमत ने कंपाइल करके इकट्ठी करके सारी दुआएं दिन शब रोज की ताकीबात वगैरह वगैरह ज्यारतें सब उसमें डाल दी हैं ना। आपको कहें ऐसी कोई जियारत मिली है कि फला इमाम मासूम के 40वां की जियारत है किसी की, मसलन इमाम अली अलैहि सलाम के 40वें की जियारत है, इमाम हसन अलैहि सलाम की, इमाम जैनुल आबदीन अलैहि सलाम की, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम, बकिया आइमाए मासूमीन अलैहि सलाम की है कोई 40वें के दिन की जियारत। हाँ आइम्मा ने फरमाया था, आइम्मा ने फरमाया, छठे इमाम से किसी ने सवाल किया कि इमाम ये तो बयान फरमाए आप सब इमाम हैं सब नूर वाहिद हैं सब कुलना मोहम्मद है लेकिन आपके दरमियान आप जो है ना کس کو ہمارے لیے زیادہ، میں اب لفظ مجھے نہیں مل رہا ہے، یعنی یوں اگر کہا جائے کس سے ہم زیادہ تمسک رکھیں، توسل رکھیں، زیادہ تر جو ہے اس سے تمسک و تول رکھیں، تو امام نے آگے سے فرمایا سنو کلنا سفن النجات، ہم سارے کے سارے اول سے لے کر آخر تک چاردہ معصومین سفن النجات، سفینے نجات، نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن آپ چاہتے ہو کہ تیز رفتار سپیڈ میں جو نجات دینے والی کشتی پر سوار ہو جاؤ، تو پھر سنو کلنا سفن النجات ولیکن سفینت الحسینی اوسع و اسرع. اللہ اکبر، چھٹے امام فرمائے ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین نجات کی کشتی ہے، بڑی بھی ہے، وسعت بھی ہے. مطلب کیا ہے؟ ہر کوئی اس میں آ سکتا ہے، حسین سب کو سموتے ہیں. آج اربعین میں کیا ہو رہا ہے؟ عیسائی ہے، کیتھولک عیسائی بھی ہے، پروٹیسٹنٹ بھی ہے، ایتھیس بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، چائنیز وہاں پر ایک کمپنی کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، کچھ پروجیکٹ کرتی ہے راک میں، وہ چائنیز لوگ آئے ہیں وہاں اربعین کا اسٹال لگا کر لوگوں کو نیاز بانٹ رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، جوس کے ڈبے دے رہے ہیں. ان کا کیا لینا ذرا امام حسین کے ساتھ دے؟ ارے ایتھیس دے تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. اس خاتون سے وہ انٹرویو لے کر پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر اگلی ویڈیو میں کیسے آپ یہاں پر موجود ہیں، وہ کہتا ہے کہ اٹس فار امام حسین، اٹس فار امام حسین. آپ تم کیسے جانتی ہو محترمہ امام حسین؟ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر آرتھوڈاکس بڑے بڑے علماء، عیسائی علماء وہاں پر آئے، یہودی علماء وہاں پہ، وہاں جو عراق میں غیر مسلمان فرقے وہ بھی شریک ہو رہے ہیں. کلنا سفن النجات، معصوم نے فرمایا تھا ہم سب نجات کی کشتیاں، لیکن امام حسین کا جو کشتی ہے نا وہ ہر انسانیت کو سموتی ہے، پورے انسانوں کو اپنے اندر لیتی ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ نجات دلاتی ہے. میں نے اس دن آپ کو لبنان کی اس خاتون کا ذکر کیا، ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں. آج بھی آپ یقین کریں، میں 5 سال اس ریجن میں رہا اور مجھے یہاں کے گراؤنڈ کے حالات کا پتہ ہے. آج بھی لبنان میں، شام میں، اردن میں، ان علاقوں میں جو غیر مسلمان رہتے ہیں، جب کسی بڑی مشکل میں پھنستے ہیں نا تو آپس میں کہتے ہیں چلو ست زینب کے مزار پہ جاتے ہیں، ست زینب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس لیے آپ جب بی بی کے روزے میں زیارت کے لیے جائیں گے تو خواتین والے دروازے میں ٹوپیوں والے لمبے لمبے چوغے رکھے ہوئے ہیں ان خواتین کے لیے جو آتی ہیں بغیر، جو آپ کے ظاہر ہے اپنے طریقے سے آتی ہیں، اپنے مذہب کے حساب سے وہاں آتی ہیں تو احترام میں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، ایک خاتون وہاں بے چینی میں آگے جا رہی تھی، پیچھے جا رہی تھی، ہم آ رہے تھے تو دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئی اور اس نے کہا حجاب نہیں ہے. ہم نے کہا یہاں کھڑی، یہاں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا نہیں ہے، مجھے نہیں ملا. ہم گئے تو اسٹینڈ تھا لیکن اس میں وہ چوگے نہیں تھے، شاید زیادہ زائرین آئے تھے، زیادہ غیر مسلمان زائرین تھے، یا وہ شاید مسلمان بے پردہ عورت تھی تو وہ لے کے گئے تھے، خالی تھے. تو وہ کہتی تھی دیکھیں مجھے جلدی اندر روزے میں پہنچنا ہے، بڑی بے چین تھی، مسترب تھی، کہتی مجھے جلدی روزے میں پہنچنا ہے، میں سیدہ زینب کے پاس ننگے سر کا. جن یزیدیوں نے بی بی کو کربلا سے شام تک ننگے سر بھرایا، آج دیکھیں جو حجاب پر یقین بھی نہیں رکھتا ہے، وہ ایک عورت کہتی ہے میں اس با عظمت بی بی کے روزے پر ننگے سر جانا پسند نہیں کرتی، میرے لیے کوئی حجاب اور ٹوگا لا کے دے دو، میں لبنان سے آئے ہوں، میں کرسچن ہوں، میں نے اپنی حاجت لے کر سید زینب کے پاس جانا. اللہ اندازہ لگا رہے ہیں عزیزوں، کیا کہا تھا شاعر نے اردو میں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، حقیقت میں یہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیوں؟ معصوم نے فرمایا بھائی امام حسین نجات کی کشتی اسرع بھی ہیں، اوسع بھی ہیں، وسیع بھی ہیں، تیز بھی ہے، جلدی انسان کو نجات دلاتی ہے. اللہ اکبر، واحد امام معصوم. اس سے پہلے میں ایک اور عرض کر دوں، بروز قیامت، یہ پھر معصوم فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام اللہ کے نبی، تمام اللہ کے ولی، مقام و منزلت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے، منفرد مقام امام حسین علیہ السلام. کیوں؟ امام عالی مقام جیسی قربانی، امام عالی مقام جیسی زحمت، تکلیف ان کے اہل و عیال نے جس طرح اٹھائی ہے ایسا کسی نبی نے بھی نہیں اٹھایا. نبیوں کو آگ میں ڈالا ہے، نبیوں کو آرے سے چیرا ہے، نبیوں کو ان کے گھر جگہوں سے ہجرت کرانے پہ مجبور کیا ہے، لیکن اس طرح کی قربانی کہیں نظر نہیں آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، ایک بیٹا اسماعیل کا اس کو ذبح کرو. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کتنے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا ہے؟ 6 ماہ کے اسماعیل کو بھی ذبح کیا ہے. خدا ہے خدا خوش ندی الہی میں دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کوئی قربانی، کوئی ایسی قربانی بچتی ہی نہیں ہے جو امام عالی مقام اور آپ کے خانوادے نے نہ دی ہو. کوئی ایسی تکلیف بچتی نہیں ہے جو امام عالی مقام اور آپ کے خانوادے نے نہ اٹھائی ہو. وہ جو کائنات پر جن کا کنٹرول ہے، وہ جو اختیار رکھتے ہیں کائنات کے اوپر، کائنات کے ذرے ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ چاہیں تو کائنات کو کنٹرول کر کے کچھ بھی کرا دیں، لیکن رضا یا رب کے لیے مجبور و لاچار کر دیے جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے ہاتھ کو باندھنا، رسن بستہ کرنا، در بدر پھرانا، نعوذ باللہ توہین کرنے کی جسارت کرنا. یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. شام کے قریب بعض ایسی منحوس بستیاں آئی ہیں جہاں سے اس قافلے کو گزارا گیا، وہاں پتھراؤ کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. اللہ اللہ اللہ، یہ حقیقتیں ہیں. یہ ساری چیزیں برداشت کیا، تحمل کیا. کیوں؟ تاکہ دین خدا صحیح معنوں میں باقی رہے. پیغمبر گرامی اسلام کی 63 سالہ جو محنت ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا جو ہے ایک چراغ عطا ہو جائے، وہ باقی رہے، وہ بجھے نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں واحد تنہا امام معصوم ہے جن کے چہلوں کی زیارت آئی، اور کسی امام معصوم کے چہلوں کی زیارت نہیں. ہمارے پاس تو کتابوں میں نہیں ہے کہیں پر، ہوتی تو سینے سے لگا کے پڑھتے. واحد امام معصوم سید الشہداء علیہ السلام ہیں جن کے چہلوم کی بھی زیارت آئی ہے. معصوم کی طرف سے تعلیم دی گئی، چہلوم کے دن یہ زیارت پڑھ لینا. چہلوم منانے کی اتنی اہمیت دی کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ امام حسین کی 40 مناتا ہے. اب بس میں آپ کی آج زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. میں کچھ اور، چھٹے امام، آپ انٹلیکچوئل ہیں اس لیے میں تھوڑا سا اوپر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، چیزوں کو لے کے ڈیپلی جا رہا ہوں اوپر اوپر، لیکن سمپل ورڈز میں سمجھا دوں گا. بینگ اے ایک دینی طالب علم کے، ہم بہت سی روایات سے بھی ہمارا سروکار رہتا ہے، علوم حدیث میں بھی ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور بھی مثلاً مسائل. ہمارے سامنے ایک بڑا کوشچن تھا کہ دیکھیں، ہمارے پاس بعض ایسی روایات ہیں جس کا ٹائٹل ہے تخلیت السرب. چلے ٹرمنالوجی کو چھوڑ دیں، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بھائی حج کا فریضہ کسی پر واجب ہو گیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب حج کا فریضہ تو آپ پر آ گیا ہے، اچھا حج میں جانے کے لیے طاقت اور استطاعت بھی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اسے بیمار ہے تو حج کے لیے نہیں جا سکتا. اچانک پیسہ چوری ہو گیا، حج واجب ہونے کے باوجود بابا پیسے چوری ہو گئے، جو زاد راہ ہے، راستے کا خرچہ ہے، وہ نہیں ہے میرے پاس، اس سال نہیں جا سکتا، فریضہ ہے اگلے سال. یہ سارے بتاتے ہیں یہ بھی ہونا چاہے، یہ بھی ہونا چاہیے. ایک اور شرط بھی ہے، حاجی صاحب حج فرض ہونے کے باوجود ایک شرط یہ ہے، حج کے لیے جا رہے ہو نا، راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ جان جانے کا خطرہ، دشمن کے حملے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ پرامن ہے راستہ، کوئی خطرہ، جان تو نہیں جائے گی نا، خطرہ تو نہیں ہے نا؟ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو نہیں، فی الحال حج آپ پر واجب نہیں ہے، اگلے سال جاؤ. اگلے سال بھی رہے تو اس سے اگلے سال جاؤ. یہ ہے تخلیت السرب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجتہد اجتہاد کرتا ہے نا، تو حج کے جو واجب ہونے کے احکامات بیان کرتے ہیں وہ ان روایات کو سامنے رکھتا ہے.
अच्छा, ये रिवायात मोस्टली हमारे पास दीगर आइमा के साथ भी हैं, आइमा की तरफ से भी हैं, लेकिन मोस्टली ये रिवायात पता है छठे इमाम से। जिस टाइम में ये रिवायात छठे इमाम बयान कर रहे हैं ना, इन द सेम टाइम, गौर कीजिएगा, एट द सेम टाइम छठे इमाम से एक और सफर के बारे में सवाल होता है। कल अगर वक्त मिलेगा ना तो मैं कुछ रिवायात को कोट भी, मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा आपको इस्तलाहात और टर्मिनोलॉजी के दरमियान उलझा दूं, सीधे सीधे मैं चाहता हूं चीजें पका पका के प्लेट के में रख के मिले। वो ये इमाम से एट द सेम टाइम पूछते हैं कि इमाम ये तो फरमाए वो हम करबला जाना चाहते हैं ज्यारत के लिए, ये तो पाबंदी लगी हुई है ज्यारत के ऊपर, न सिर्फ पाबंदी है, जाने वाले के लिए बदतरीन पनिशमेंट का कहा गया है, और पनिशमेंट में हाथ पैर काट देते हैं, आंखें निकालते हैं, बच्चों से दूर कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं, जिस सवारी पे जाएं उस सवारी को छीन लेते हैं, आइंदा जो है ना अंडर द वॉच हो जाते हैं, जिंदगी अजीरन बना देते हैं अगर बाकी बचे तो, मार ना दिया तो। इन हालात में कि इतने खतरात हैं जियारत में जाने के लिए, इमाम हम क्या करें इन हालात में जाए, इमाम फरमाते हैं उसके बावजूद तुम लोग जियारत के लिए जाओ। समझ में आ रही है बातें, हज के लिए खतरा है रास्ते में, जान बचाओ फिलहाल न जाओ अगले साल जाओ, जियारत के लिए खतरा है पांव कटेगा हाथ कटेगा मार दिया जाऊंगा नहीं फिर भी जाओ, क्यों भाई? हिकमत है, हिकमत है, हिकमत है। हज खतरे में नहीं है, हज को मिटाने की कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि हज की इंश्योरेंस इमाम हुसैन ने अपने लहू से की है। इमाम हुसैन है दीन की इंश्योरेंस करने वाले, इमाम हुसैन ने अपना खून देकर इस दीन की हिफाजत की गारंटी दी है। हुसैन की जियारत बाकी रहे सब कुछ बाकी रहे, ये है फिलोसफी, क्योंकि रोजे इमाम को मिटाने की कोशिश हो रही है, लिहाजा पांव कटते हैं तो कटे चले जाओ ज्यादत के। यही तो सद्दाम के दौर में कर रहे थे मोमिनीन, हर साल जब भी ज्यारत के लिए जाते थे कोई ना कोई वहां पर शहादतें होती थी, कोई ना कोई गिरफ्तारियां होती थी। अभी एक वीडियो किसी ने मुझे पोस्ट किया था, कोई करीब 90 समथिंग एज की एक खातून की, जो रोते हुए वो कहती थी कि मैं पिछले तकरीबन 18-20 सालों से ये मैं आ रही हूँ मशी के लिए यहाँ पर, उससे पहले पता नहीं कहाँ थी, तो क्या हुआ, कह रही कि मैंने कभी भी सद्दाम के दौर में सद्दाम के फौजियों के हाथ से मैंने ना कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया, क्यों? फिर कहती है मैं आज भी इन मौके से ना खाती हूँ ना पीती हूँ। उसका अकीदा है, उसका जज्बा है, उस जज्बे को हम सलाम भेजते हैं, सही है अपनी जगह पर। वो कहती इसलिए कि जब मैं पानी पीना चाहती हूँ मुझे बीबी ज़ैनब सलामुल अलैहा याद आती हैं, बच्चे याद आते हैं, वो इस पूरे रास्ते में करबला से कूफा, कूफा से शाम तक प्यासे रखे गए, उनको भूखा रखा गया। फिर कि मैं कैसे पी सकती हूँ जब रोटी नजदीक करती हूँ मुझे वो याद आता, इन्हीं अय्याम में मैं पानी नजदीक करती हूँ, ये उसका अकीदा है, जज्बा। और क्या ये हकीकत है? वाकिर वाकिर ऐसा किया गया। चौथे इमाम फरमाते हैं कि ये खबीस व मलऊन हमें रोटी का एक टुकड़ा देते थे कि जिंदा रहे, पानी चंद घूंट का देते थे, और मैं अपनी फूफी अम्मा को देख रहा होता था कि मेरी फूफी अम्मा अपनी जो रोटी है उससे भी तकसीम करके बांट के टुकड़ों में बच्चों को खिलाती थी, खुद पानी का एक घूंट लेके बैठ जाती थी, और फिर जब वक्त आता था नमाज शब पढ़ने का तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि मैंने फूफी अम्मा को देखा बैठकर नमाज शब पढ़ रही है। मैंने कहा फूफी अम्मा सब खैर तो है ना, आज आप बैठकर नमाज शब पढ़ रही है? तो कहने लगी बेटा सज्जा आज ये है कि मैं अब जो है ना मेरे घुटने जवाब दे गए, अब मुझ में खड़े होकर नमाज पढ़ने से की सिकत नहीं रही है। उस आलम में भी खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज शब पढ़ रहे हैं, फूफी अम्मा नमाज शब पढ़ रही है, ये जुल्म सितम होता था। तो ये जो औरत ने बात कही है वो अपनी जगह ठीक है, उसका अकीदा और जज्बा है। बस 40 के अय्याम, ये जो अय्याम गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक मिजाज बन गया है। हम समझते हैं, पहले ख्याल होता था कि अय्याम गम व सोग व आजादारी अव्वल मुहर्रम से 10 मुहर्रम, उसके बाद खामोश हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, जाओ भाई भूल जाओ। फिर आके 40वें के दिन एक मजलिस करो, एक छोटा सा कहें, कोई जुलूस निकाल के बात खत्म करो। हम ये समझते थे, ये गलती है हमारी समझ। अब उससे भी एक और सिचुएशन अरीब हो रही है, बाज लोग अब अव्वल मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक नहीं आते मजालिस में, इसी शहर में होने के बावजूद, उसी गांव में होने के बावजूद, उसी मुल्क में रहने के बावजूद, इतनी बेतौफीकी हो जाती है उनके लिए। ये न समझे कि वो कोई हुनरमंदी का काम कर रहे हैं, कोई अकलमंदी का काम कर रहे हैं और दूसरों से ज्यादा समझदार बन गए हैं, ये ना सोचे। कल मैंने अर्ज किया था, मेरे मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाई हक के रास्ते, सच के रास्ते, अच्छे काम किए बगैर तुम लोग अकलमंद नहीं हो सकते हो। ला युकमिलुल अकल इल्ला बि इत्तिबाइल्हा। तो ये जो आप काम कर रहे हो अकलमंदी का काम है कि कहते तो नहीं मैं अव्वल मुहर्रम से 7 मुहर्रम तो मैं अपना काम करूंगा, रोजाना के मामूल पे चला जाऊंगा, मैं फिर वो आखिरी 3 दिन तबरुकन जाऊंगा। मजबूरी है, अलग बात है, मजबूर है इंसान कहे पर, ऑप्शन नहीं है, लेकिन सुस्ती है, अपने स्केजुअल को पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अल्लाह के मन, लोग अपनी छुट्टियां साल भर की छुट्टियों में गुंजाइश रखते हैं, कहते हैं मुहर्रम कब आ रहा है ताकि मैं उसी दिनों में छुट्टी ले लूं, सफर कब आ रहा है मैं तब उसी वक्त छुट्टी। अल्लाह, लोग ट्रेवल करते हैं, ये भी तौफीक है ना, ये भी तो लोग हैं ना, इनके पास ये वेले बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। लोग पहले से ऑर्गेनाइज होते हैं। मैं जज़ाकुमुल्लाह कहता हूं आपके शहर के एक मोमिन ने, आइंदा आने वाले मुहर्रम और अरबईन कि मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, न उस मोमिन को पता है, अल्लाह उसे हयात तय्यब ताहिर और लंबी उम्र अता करे। वो कहा जी आइंदा एक खमसा मेरे पास पढ़ना है। ये जज्बे हैं या नहीं है लोगों में? तो भाई वो जो 7 मुहर्रम को आने वालों, और उनमें से भी बदतर कुछ लोग हैं जो तासवा और आशुरा को सिर्फ आ जाते हैं। आने वालों सुनो, तुम लोगों के पास ये तौफीक क्यों नहीं है? कभी खुद पर गौर किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये तौफीक मुझे क्यों नहीं दी है? आखिर मुझ में कोई कसूर है ना कि मैं दर हुसैन से दूर होता चला गया हूँ, मैं दर हुसैन में सिर्फ 2 दिन हाजिर हो पाया हूँ, 8 दिन मैंने जाया किए, 7 दिन मैंने जाया किए, पूरी अरबईन आ रही है सर पर, मैं दर हुसैन में हाजिर नहीं हो रहा हूँ, कुछ और लोग हाजिर होते हैं, उनमें और मुझ में क्या फर्क है? तुम ज्यादा जहीन हो, तुम ज्यादा परहेजगार हो, मन ऐसा नहीं है अजीजो। वो जो कहते हैं ना, वो तौफीक कहें मिलती है ना कहें से, कहते हैं ना मौला मुझे बुला ले कि मैं आपके रोजे की ज्यारत के लिए आ सकूं। हैं, एक बुजुर्ग थे, उन वो बेचारे 3 साल से ज्यारत के लिए, बस मैं आपकी जहमतें तमाम कर रहा हूँ, एक बुजुर्ग थे 3 साल से वो जो है ज्यारत के लिए कोशिश कर रहे थे। हुआ यह कि उस बेचारे को हर साल जो है ना कोई बहाना बन जाता था, कोई ना कोई बहाना बनकर वो ज्यारत के लिए जा नहीं पाते थे। तो जब भी मिलते थे तो कहते थे कि बुजुर्गों ज्यारत का था प्रोग्राम आपका तो कुछ हुआ नहीं, कि नहीं उधर से बुलाया नहीं अभी तक, कहते लगता है अभी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इस वक्त काबिलियत पैदा नहीं कर सका अपने अंदर कि मैं ज्यारत के लिए जाऊँ। अल्लाह, कहते मेरे अंदर अभी काबिलियत पैदा नहीं हुई। एक साल उसको देखा कि वो ज्यारत के लिए रवाना हो रहा है, तो पूछा ओह माशाल्लाह इस साल तो आप ज्यारत के लिए जा रहे हैं? कहने लगा जी मैं इस साल ज्यारत के लिए जा रहा हूँ। फिर कहा देखो जो भी कोई भी ज्यारत के लिए ना जा सके ना, वो ऐसे करे कि बीबी की सीरत पर अमल करे। कहा बीबी की सीरत पर क्या अमल करें? नमाज शब पढ़े। बेखुदा मैंने 3 साल नमाज शब पढ़ी, जब भी नमाज शब के लिए खड़ा होता था मेरे आंसू निकलते थे। क्यों? मुझे याद आता था कि करबला में बीबी ने नमाज शब जले हुए खेमे के ऊपर बैठकर पढ़ी, कूफे में रास्ते में शाम में कभी बगैर छत के उस खराबे या शाम में टूटे हुए उस कैद खाने में पढ़ी, कहे पर क्या है भूख के आलम में थी, प्यास के आलम में थी, उसके बावजूद खड़ी नहीं हो सकती थी। इमाम मासूम फरमाते हैं कि भूबी अम्मा खड़ी नहीं हो सकती थी, बैठकर नमाज शब पढ़ी। मैंने कहा या इमाम हुसैन आपकी बहन का वास्ता, मैं आपकी बहन की सीरत पर अमल कर रहा हूँ, मैं भी मैं नमाज अशा पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने पास बुलाया, कहते इस साल मैंने मोड़ा हम। अल्लाह अल्लाह अजीजो, ये सब हकायक अपनी जगह पर है, बस मैं आपके चंद मसाइब आपके आपकी जो है जहमत तमाम करता हूँ। शाम के दरवाजे पर बहुत सारे वाकयात, शहर के दरवाजे के सामने, क्योंकि 3 दिन वहां रखा गया, फिर बाबू साथ में ले जाकर वहां पर कई घंटे खड़ा रखा गया, यानी अंदर दरबार के करीब ले जाकर, बाब तुमा जिसको आज कहा जाता है, उस दरवाजे पर 3 दिन रखा गया। शहर को सजाते सजाते वहां पर बड़े वाकयात, उसमें तो एक मशहूर वाकया है जो सहाबी सुहेल का वाकया है। यहां पर दो रिवायत है, मशहूर रिवायत है एक गैर मशहूर, मैं चाहता हूं आज गैर मशहूर रिवायत को पढ़ू। ये सुहेल कहता है कि मैं शहर से बाहर गया हुआ था, मैं आया शहर में तो शहर के करीब जो ही पहुंचा मैंने देखा कि हालात मुख्तलिफ है, शहर से बाहर हुजूम इकट्ठा हो चुका है, सजावटें नजर आ रही हैं, ढोल वाले ढोल पीटने वाले वो ढोल पीट रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आज यहाँ पर क्या जश्न मनाया जा रहा। करीब पहुंचा मुझे सूरत हाल का थोड़ा सा अंदाजा होने लगा। कह रहे कि जब शहर के बाब तुमा वाले दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरी निगाह पड़ी असीरों के काफिले के ऊपर, जिनको एक रस्सी में बांधा गया था और बच्चे हैं कि बार बार गिरिया करते थे रस्सी की वजह से, जो जख्म उनके गलों में आई। कह रहे कि मेरी निगाह आगे पड़ी तो इस असीरों के काफले के सामने मैंने नेजों के ऊपर सर देखा और लोगों का एक बड़ा हुजूम है जो उन सरों की तरफ देख रहा। माफ करना ज़ादारों, मैं इस तरह मसाइब पढ़ने का आदी, बस आज मैं इशारा करना चाहता हूं। मैंने ये देखा कि बाज लोग हाथों में किंकरियां और पत्थर और टिल्ले लेकर उन सरों को मार रहे हैं और इनमें से कुछ है कि इन बच्चों की तरफ उछाल रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कोई है कि मट्टी उछाल रहा है। कहता है कि मैं इनके करीब चला गया, कहते एक बच्ची मेरे करीब हो गई और आवाज दी, शेख मेरी बात सुनो। कहते मैं उस बच्ची के करीब गया, कहता है कि तुम कौन हो, कहा कि हम आले रसूल हैं। वाह हो मुझ पर, मैं आले रसूल को आज इस हालत में देख रहा हूं। हिदायत के चराग को, नबुवत के गिराने को जहां वही उतरती है, जिब्रील अमीन बगैर इजाजत के अंदर नहीं आता है, मालिकुल मौत भी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आता। कहते हैं वाह मुसीबत, आज नबी के गिराने को इस आलम में यहाँ पर क्यों रखा गया। कहते शेख मेरी बात सुनो, तुम हमारे चाहने वालों में से होना, तुम हमारे मानने वालों में से होना, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये उमर साहब की फौज इन सरों को हमसे थोड़ा दूर ले जाए ताकि लोगों का ये तमाशा उधर चला जाए, आले रसूल को नंगे सर न देखे, बेमन हो चादर न देखे। कहता है कि मैं थोड़ा आगे चला गया, उन अशकिया कौम अशकिया के पास चला गया जिन्होंने सर थामे हुए थे, और मैंने उनमें से जो उनका बड़ा था उसको बुलाया और मैंने कहा सुनो मेरी एक बात, क्या तुम कुछ पैसे लेकर मुझसे मेरा एक छोटा काम कर सकते हो। कहा कि क्या काम है, पैसे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा मैं तुम्हें 450 दिरहम देता हूँ, सोने के सिक्के देता हूँ, बस तुमसे इतनी गुजारिश है इन सरों को जरा इन बीवियों से दूर लेके चला जा, ये तमाशा वहां लग जाए, बीवियों के नंगे सरों पर किसी की निगाह न पड़े। उस मनुष्य ने दिरहम तो लिए लेकिन दगाबाजी की, सरू को आगे नहीं लेकर चला गया। अजीजों बस एक मुख्तसर सी रिवायत और मैं पढ़ना चाहूंगा। अब्दुल्ला इब्ने कदा छठे इमाम के एक सहाबी हैं, वो नकल करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने कदा छठे इमाम के सहाबी हैं, छठे इमाम अपने वालिद इमाम बाकिर से नकल करते हैं। इमाम बाकिर जो करबला में मौजूद थे, कहते हैं कि मैंने अपने बाबा से पूछा, बाबा जान आप करबला में थे, आप असीर हुए, आपको कुबे से शाम ले जाया गया, बाबा जान शाम में आपके साथ क्या हुआ। कहते इमाम बाकिर अलैहि सलाम वक्त बका, इमाम बाकिर ने रोना शुरू कर दिया।
वलता मसीह ने पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद फरमाया बेटा मैं तुम्हें क्या ए मेरे बेटे सादिक, सबसे बड़ा और मुश्किल वक्त हमें शाम में उस वक्त का सामना करना पड़ा। करे उससे बड़ा वक्त कड़ा वक्त ये था जब जिंदा ने शाम देते हैं और वहां से हर गुजरने वाला उस टूटे हुए सिद्धांत में आता था। हमें फकीरों और लाचारों मजबूर की तरह हमें रोटियां उछालता था, खजूरें फेंक के चला जाता था। मैंने कई बार सोचा खुदाया हमें सब्र लायक फरमा, खुदाया आले रसूल को इस गम मुसीबत से निकाल दे। अल्लाह रहमतुल्लाह अला कौमिल जालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا عاقبة للمتقين أهل التقوى واليقين. پروردگارا ایام 40 امام حسین ہیں جو نجات کی کشتی ہیں،